ॐ सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांकवह्निनयनं वंदे मुकुंदप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं शांतं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयदं दक्षिणाङ्गीवहन्तं नागं पाशञ्जघण्टां डमरुकसहितं सांकुशं वामभागे नानालंकारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। कल ही भगवान राम का जन्म महोत्सव मनाया गया। स्वामी जी को दो चार दिन के लिए कहीं जाना आवश्यक था, इसलिए मेरे को ये सेवा का अवसर मिल गया है। नहीं तो वैसा स्वाध्याय तो मेरा चले रहा था, परंतु ये भी प्रसंग आ गया। अब उनका तो जो विषय चल रहा होगा वो आप लोग जानते ही हैं, मेरे को उसकी जानकारी नहीं है कि क्या चल रहा था, और ना उन्होंने बताया ना किसी श्रोता ने बताया मेरे को। तो रात को गिरिश बहन कहा कि कल आपको कथा करना है, मैंने कहा ठीक है। मैंने एक दिन शुरुआत में एक श्लोक बोला था, मनुष्य जीवन की दो प्रकार के भाव होते हैं या दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है हर जीव के अंदर। ये दो जिसको शास्त्रों ने प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग कहा है, जीव हमेशा ही प्रवृत्ति में भी नहीं रह सकता है और हमेशा निवृत्ति में भी नहीं रह सकता है, इसलिए दोनों का संगम प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दोनों के संगम का नाम ही जीवन होता है। वास्तविक देखा जाए तो प्रवृत्ति में भी निवृत्ति होती है और निवृत्ति में भी प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति में निवृत्ति और निवृत्ति में प्रवृत्ति ना प्रवृत्ति बाधक है ना निवृत्ति बाधक है। वास्तविक ना हमारे अंदर ना प्रवृत्ति है ना निवृत्ति है, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति है क्या इसको समझना चाहिए, जानना चाहिए। इसलिए भगवान ने सृष्टि के आदिकाल से इन जीवों के लिए बताया था कि लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। सृष्टि के आदि से, प्रारंभ से ही भगवान ने ये दो प्रकार का जीवों के अंदर निष्ठा ईश्वर प्रदत्त है, ये जीव निर्मित नहीं है, ईश्वर प्रदत्त है, स्वाभाविक है, प्राकृत है, नैसर्गिक है। और इसी दो निष्ठा को इसलिए बताया था भगवान ने, पुरा प्रोक्ता मयानघ, कहा कि मैंने ये दो प्रकार की निष्ठा सबसे पहले सृष्टि के आदि में ही बताई थी। किस लिए बताई थी, बताया किस लिए जाता है, बताया इसलिए जाता है कि उसको जानकारी हो, जानकारी हुआ करना इसलिए है कि वास्तविक तुम ना प्रवृत्त हो ना तुम निवृत्त हो, तुम जो है सो है। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति कहां है इसको समझने के लिए, इसी को ही भगवान ने ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग बताया। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। कर्म योगियों के लिए कर्म और ज्ञान योगियों के लिए सांख्य अर्थात ज्ञान। ज्ञान और कर्म, ज्ञान क्या है ये भी समझना चाहिए और कर्म क्या है ये भी समझना चाहिए। हम जिसको कर्म देखते हैं या मानते हैं या कहते हैं या करते हैं, ये कर्म है या नहीं है ये सोचने के लिए क्या। इसी प्रकार से हम जिसको ज्ञान कहते हैं ये वास्तविक ज्ञान है या नहीं है, हम तो किसी भी वस्तु को देखते हैं तो कहते हैं हाँ हम जानते हैं। इसलिए ज्ञान को भी जानना चाहिए कि ज्ञान क्या चीज है और कर्म क्या चीज है। तुम जिसको समझते हो, जिसको मानते हो, शास्त्र उसको कर्म नहीं कहता है। तुम जिसको ज्ञान कहते हो उसको शास्त्र ज्ञान नहीं कहता है। तो बात संशयापन्न हो जाती है कि नहीं। तो इसलिए भगवान ने ये मार्ग क्यों बताए हैं, क्योंकि इनको जानने के लिए, और जानना इसलिए होता है कि जानकारी हो तो आदमी सरलता से चल सकता है। क्या जिसको आपको मालूम है कहां जाना है, निश्चय किया है, परंतु रास्ता मालूम नहीं है, ये मार्ग है क्या, ये साध्य नहीं है जीवन का, ना ज्ञान साध्य है ना कर्म साध्य है। कर्म भी एक मार्ग है और ज्ञान भी एक मार्ग है। जाना तुम्हें अन्यत्र है, जहां तुम जाना चाहते हो उसके लिए ये मार्ग बताए जाते हैं। और मार्ग की जानकारी नहीं हो तो हमारा जीवन भटक जाता है, हम लक्ष्य पर पहुंच नहीं सकते हैं, चुकलिया वर्म फेरा पड़े। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा है कि यदि वर्म चुक लिया, यदि हम वास्तविक वस्तु को नहीं जाने, मार्ग को नहीं जाने, तो कहते चुकलिया वर्म फेरा पड़े। वर्म यदि छूट गया तो चक्कर पड़ जाता है चक्कर, और इस चक्कर से सभी मुक्त होना चाहते हैं। क्या सभी जीव मुक्त होना चाहते हैं, कोई भी जन्म के और मृत्यु के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता है, अर्थात मुक्त होना सभी चाहते हैं। परंतु मुक्त कैसे होंगे ये नहीं जानते हैं। क्या जानते हैं? मुक्त कैसे होना है, मुक्ति क्या है, ना मुक्ति को जानते हैं और ना मुक्त कैसे होना है उस मार्ग को जानते हैं। इसलिए भगवान ने ये मार्ग बताए हैं कि तुम चाहे कर्म मार्ग से चलो, कोई अर्ज नहीं है। तुम्हारा अधिकार है तो ज्ञान मार्ग से चलो, अधिकार नहीं है तो कर्म मार्ग से चलो। ये दोनों भी मार्ग तुम्हारे लक्ष्य को ही प्राप्त करने के लिए है। क्या दोनों भी मार्ग जो है लक्ष्य को ही प्राप्त करने के लिए है, परंतु जानकारी नहीं है तो दोनों मार्ग भी नरक के लिए भी है। क्या इसकी यदि आपको जानकारी नहीं हो तो ये आपको गर्त में भी ले जाते हैं, नीचे भी गिरा देते हैं। इसलिए भगवान ने इन दोनों मार्ग की जानकारी अर्जुन को बता दी है। ज्ञान मार्ग के लिए अधिकारी की आवश्यकता है, उत्तम अधिकारी होता है वही ज्ञान मार्ग पर आरूढ़ होता है, तो उत्तम अधिकारी के लिए भी बता दिया। परंतु जो उत्तम अधिकारी नहीं है उसके अंदर वो अधिकार नहीं है, विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, षड् संपत्ति नहीं है, मुमुक्षुता नहीं है, क्योंकि सभी जीव विवेकी नहीं होते हैं। सभी जीव वैराग्यवान नहीं होते हैं। सभी जीवों के अंदर ये षड् संपत्ति नहीं होती है, श्याम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये षड् संपत्ति नहीं होती है और न मुमुक्षुता होती है। तो फिर ऐसे जो जीव है अर्थात अनधिकारी जो जीव है वो मोक्षारूढ़ कैसे हो? क्या उनका अधिकार नहीं है मोक्ष को प्राप्त करना? सभी जीवों का अधिकार है। ऐसा अधिकार नहीं है ये बात नहीं है। जीव का अधिकार तो मोक्ष के प्रति है ही, परंतु चलने की शक्ति हर जीव के अंदर भिन्न भिन्न होती है। क्या हर जीव के अंदर पात्रता योग्यता शक्ति अलग अलग होती है। इसलिए ऐसे जो अनधिकारी जीव है जिनके पास विवेक नहीं है तो इसलिए उसके अंदर विवेक जागृत करना जरूरी है। जिसके अंदर वैराग्य नहीं है उस वैराग्य को भी उसके अंदर जागृत करना है। श्रुतियां यही तो बताती है, षड् संपत्ति नहीं है, श्याम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये मालूम नहीं है क्या है तो ये उसको अधिकारी बनाने के लिए। क्या क्योंकि ये तो निश्चित है, शास्त्र का उद्घोष है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं हो सकती है, मोक्ष नहीं हो सकता है। तुम्हें ये मालूम नहीं है कि बंधन क्या है, तो मुक्ति कैसी मालूम होगी फिर? जिसको बंधन ही मालूम नहीं है उसको मोक्ष क्या है ये कैसा ज्ञान होगा? शास्त्र जानता है कि तुम किसके बंधन में बंधे हो, इसलिए उस बंधन से किस साधन से तुम छूट सकते हो ये शास्त्र जानता है। जैसा कोई अपराधी जीव होता है और पुलिस उसको अपराध में धाराएं लगा करके उसको क्या कर देती है, बंद कर देती है, परंतु उस अपराध से मुक्त करके उसको जेल से छुड़ाना कैसा है ये कौन जानता है? कौन जानता है? वकील जानता है। क्या? वकील जानता है। उस अपराध से उसको कैसा मुक्त किया जाए और उसको जेल से कैसा छुड़ाया जाए इसको केवल वकील ही समझ सकता है, तुम नहीं समझ सकते हो। ना जिसने अपराध किया वो समझ सकता है, वकील रास्ता निकालता है। तो शास्त्र तुम्हारे वकील है, महात्मा लोग तुम लोगों के क्या है? वकील है, तुम्हें मार्ग बताते हैं। समझ रही? यदि शास्त्र जैसा वकील कहता है वैसा तुम्हें क्या बोलना है ये वकील सिखाता है, तुम्हें क्या करना है ये वकील सिखाता है। और वकील ये भी कहता है कि भाई मैं जैसा कह रहा हूं ऐसा ही बोलोगे, मैं जैसा बताता हूं वैसा ही तुम करोगे तो ही तुम बंधन से छूट सकते हो, जेल से छूट सकते हो। ये भी बताता है कि नहीं बताता है? तुम अपने मन से कुछ नहीं बोलना है, मैं जो बोलता हूं वो बोलना है, मैं जो कहता हूं वो करना है। इसी प्रकार से शास्त्र भी कहता है कि मैं जो बोलता हूं वही तुम्हें बोलना है, मैं जो कहता हूं वही तुम्हें करना है, तब ही तुम बंधन से मुक्त हो सकते हो। और बताते भी है कि तुम किस में बंधे हो और उस बंधन से किससे मुक्त होंगे ये भी बता देते हैं, और उस पर चलने के लिए भी आपको प्रवृत्त करते हैं। उस ज्ञान मार्ग में ले जाने के लिए कर्म मार्ग है, ध्यान रखो। क्या? कर्म मार्ग किस लिए भगवान ने बताया है? कर्म मार्ग है ज्ञान मार्ग में पहुंचने के लिए, और ज्ञान मार्ग है मोक्ष में पहुंचाने के लिए। ज्ञान मार्ग से ही मोक्ष में पहुंचाया जाता है और ज्ञान मार्ग ही पहुंचा देता है। परंतु पहले तो यह है कि हम उस ज्ञान मार्ग को तो जाने, उस ज्ञान मार्ग को आप कैसा जानोगे? बिना कर्म का ज्ञान मार्ग समझ में नहीं आता है। क्या? ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए भगवान ने ये कर्म मार्ग बता दिया। निवृत्ति में जाने के लिए प्रवृत्ति आवश्यक है, ध्यान रखो। ऐसा ही यदि आप कहेंगे ना, क्या ऐसा ही आपको हो, इसलिए तो महात्मा लोग भी आपको ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो क्यों कहते हैं? ज्ञान तो बहुत सीधा है, ज्ञान कोई कठिन नहीं है, ज्ञान के जैसा तो सरल कोई वस्तु ही नहीं है, समझे ना? अब मैं आप लोगों को ये पूछता हूं, तुम्हें अपना मनुष्य मानने में कितनी कठिनाई होती है? कोई कठिनाई होती है? कोई नहीं, सरलता से आप मान लेते हो, शास्त्र कहता है या महापुरुष कहते हैं कि तुम मनुष्य नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। क्या? शास्त्र या महापुरुष कहता है कि तुम मनुष्य नहीं हो, तुम ब्रह्म हो।
और लोग कहते हैं कि तुम ब्रह्म नहीं, तुम परमात्मा नहीं हो, तुम मनुष्य हो। और तुम उसको पकड़ लेते हो, परंतु जो महात्मा कहते हैं या शास्त्र कहता है, वेद श्रुतियां कहती है, उसको तुम्हें बड़ी कठिनाई लगती है ना? कठिनाई लगती है कि नहीं लगती है? महाराज हम कैसे परमात्मा हो सकते हैं? हाँ, प्रश्न होता है और तुम्हारे ऊपर बड़ा सा बोझ जैसा लगता है। बस इतना ही ज्ञान, कोई ज्यादा नहीं है, इतना ही है बस। तत्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो, परंतु वो तुम उसको समझने के अधिकारी नहीं। क्यों नहीं समझते हो? क्योंकि समझने का अधिकार तुम्हारे अंदर नहीं है। है वही बात, परंतु समझने का अधिकार न होने के कारण तुम्हारे अंदर अनेक प्रकार के संशय, विपर्य, असंभावनाएं, तर्क, वितर्क, कुतर्क, क्योंकि अंदर कूड़ा करकट बहुत जन्मों का भरा हुआ है। क्या अंदर जो है बहुत, भगवान ने तो शुरुआत में ही किससे किया? अशोचानन शोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गता सून गता सूंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तुम अपने को ज्ञानी समझते हो और जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक कर रहे हो। अर्जुन भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी भी समझता था, ऐसी बात, पढ़ा लिखा तो था ही, कोई अनपढ़ तो था नहीं अर्जुन। प्रज्ञावान के जैसी बात करते हो, परंतु तुम जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक कर रहे हो। शुरुआत में ही सीधा तत्व का उपदेश कर दिया भगवान ने, और कुछ नहीं। परंतु अर्जुन उस तत्व को समझने का अधिकार नहीं था। प्रज्ञावान तो था, क्या प्रज्ञावान होना, बुद्धिमान होना, कुशल होना, चतुर होना, चालाक होना, ये दूसरी बातें हैं। इसको ज्ञान नहीं कहते हैं, ज्ञान दूसरी चीज है। ये कुशलता, ये बुद्धि की कला है। प्रज्ञावानता, ये बुद्धि की कला है। जिस प्रज्ञा ने अर्थात बुद्धि ने बहुत वस्तुओं को अपने अंदर स्थिर कर रखा है और उसका बार बार वो उच्चारण करके बताता है, उसको हम प्रज्ञावान कहते हैं। बड़ा ये काई की आदमी बड़ा बुद्धिवान है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा विद्वान है ना? अरे विद्वान होना ज्ञान का लक्षण नहीं है, बुद्धिमान होना ज्ञान का लक्षण नहीं है, या बहुत चतुर होना, ये चतुरता भी ज्ञान का लक्षण नहीं है। ये जानना पड़ेगा कि नहीं आपको? आप तो किसी को भी ज्ञानी मान लेते हो। नहीं, ये ज्ञान नहीं है, कतई ज्ञान नहीं है। ये बुद्धि की कलाएं हैं, सवाल है ना? मन के वृत्तियां हैं, इसके अलावा इसको ज्ञान नहीं कहा जाता है। इसलिए उसको समझना है। भगवान को किस क्यों बताना पड़ा? तत्व का उपदेश अर्जुन को करने के बाद भी अर्जुन नहीं समझा है, तभी तो ये बताना पड़ा अर्जुन को, क्योंकि भगवान ने जान लिया कि ये अधिकारी नहीं है और इसको अधिकार संपन्न बनाना है। आचार्य जानते हैं, सदगुरु जानते हैं कि तुम्हारे पास मैं जो कहूंगा उसी पर आरूढ़ होना तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है। बालक है, अज्ञानी है, ना समझ है, मंद बुद्धि वाला है, तो उसको वो बताना है। तो पहला सोचना चाहिए कि भाई ये किस चीज का अधिकारी है। भगवान ने जान लिया और जानने के बाद अर्जुन को फिर ये कर्म का उपदेश कर दिया। शुरुआत में ही कर्म का उपदेश कर दिया। क्यों कर दिया? ज्ञान का उपदेश शुरुआत में ही कर दिया, दूसरे अध्याय में सीधा तत्व का उपदेश दिया, सांख्य ज्ञान। सांख्य अर्थात सम्यक तत्व का, जो यथार्थ तत्व है कि तुम क्या हो। अविनाशी तो तद्विद्धि, अर्जुन तुम तो अविनाशी हो। सीधा आत्मा का उपदेश किया कि नहीं किया? परंतु वो आत्मज्ञान का भी अर्जुन अधिकारी नहीं था। जब आत्मज्ञान का भी अधिकारी नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी कैसा होगा? क्या जो अपने को नहीं जानता है वो परमात्मा को जान सकता है? तुम्हें लगता है ऐसा? तुम्हें लगता है कि जो अपने को नहीं जानेगा वो परमात्मा को जानेगा? कैसा जानेगा? ऐसे कई भक्तों के जीवन में घटनाएं आती हैं। परमात्मा वो बुलाता है, परमात्मा उसके प्रेम से उसके घर में जाता है, परंतु वो नहीं पहचानता है, धक्का दे करके बाहर निकाल देता। आप लोगों ने कथाएं सुनी होगी ना बहुत सी। जो अपने को नहीं जानता है, जिसको आत्मबोध नहीं है, उसको तत्वबोध भी नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आत्मबोध आवश्यक है, अर्थात अपने को जानना आवश्यक है। और अपने को जानने के लिए अपने को ही अधिकारी बनना भी आवश्यक है। परमात्मा की तो बात छोड़ दो, परमात्मा की बात तो तुम अपने को जानने के बाद, परमात्मा को जानने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या? परमात्मा को जानने के लिए तुम्हें कुछ करने के कर्म की जरूरत नहीं है। फिर ये कर्म की जरूरत क्यों है? ये परमात्मा को जानने के लिए नहीं है, ये कर्म की जरूरत है अपने को जानने के लिए। हम अपने को क्यों नहीं जानते हैं? इसके कारण को तुम्हें बोध नहीं है। कहा है ऐसा? कैसा महाराज? क्या हम नहीं जानते? बड़े बड़े लोग कहते हैं कि क्या हम नहीं जानते? अपने को नहीं जानते? नहीं जानते हो, और जानते होते तो तुम बोलते भी नहीं। जो जानता है वो बोलता नहीं, बोलना ही समाप्त तो होता है। क्या? जो जानता है उसका बोलना समाप्त तो होता है, कहना समाप्त तो होता है, और जो कहता है इसका अर्थ ही है वो जानता नहीं है। श्रुतियां कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। यदि कोई कहता है कि हाँ मैं जानता हूं, तो श्रुति कहती हो बिल्कुल बिल्कुल नहीं जानता है, बिल्कुल ही नहीं जानता है। ऐसा ही हम जो जानते हैं वो झूठ जानते हैं। तुम दूसरे को एड्रेस बताते, कोई पूछता है कि तुम्हारा एड्रेस बताओ, तो तुम क्या बताते हो? किसका एड्रेस बताते हो? तुम्हारा बताते हो कि दूसरे का बताते हो? अपना एड्रेस कोई बता सकता है? तुम्हारा एड्रेस है कोई? बताइए तो, तुम्हारा कोई एड्रेस है? आप जो बताते हो सही बताते हो कि झूठ बताते हो? और फिर भी हम उसी को ही सही कहते हैं, है ना? उसी को ही गारंटी देते हैं। सब पूरा देश दे रहा है, पूरा विश्व दे रहा है। शास्त्र कहता है यही तो झूठा है, यही तुम्हें बोध कराना है। तुम्हें अपना पक्का एड्रेस शास्त्र बताता है, सद्गुरु बताते हैं। वास्तविक तुम कहां के हो ये तुम्हें मालूम ही नहीं है। तुम हो क्या यही मालूम नहीं तो तुम कहां के हो ये कैसा मालूम होगा? पहले तो बताओ। शरीर का एड्रेस तुम्हारा एड्रेस नहीं हो सकता है। शरीर का देश तुम्हारा देश नहीं हो सकता है। शरीर का काल तुम्हारा काल नहीं हो सकता है। परंतु हम
पूछते हैं कि हम कितने साल के हो गए। कल मैं किसी ने पूछा मेरे को, स्वामी जी आप कितने साल के हो गए। हमने कहा सही बताओ कि झूठ बताओ। कहा नहीं सही बताओ। हमने कहा सही तो मेरे को मालूम नहीं है, हाँ झूठ बताना है तो मैं बता सकता हूं। मालूम है नहीं? अरे है ही नहीं, तुम्हारा काल ही नहीं है। काल तो तुम्हारा बच्चा है, देश तुम्हारा पुत्र है, समझे ना, तुम्हारे से निर्माण हुआ है। तो देश और काल तुम्हारे कैसा बता सकते तुम्हारा पता। यही तो ज्ञान, यही तो समझना है अर्जुन। इसका ही तो समझदार नहीं था अर्जुन के अंदर, यही तो नहीं अर्जुन यही नहीं जानता था, इसलिए अर्जुन को ये बताना पड़ा। ज्ञान का अधिकारी न होने के कारण वो ज्ञान का अधिकारी बनाने के लिए कर्म का उपदेश है। कर्म तो तुम कर रहे हो, प्राकृत हो रहा है, स्वाभाविक हो रहा है, तुम कर्म करने के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हो। कर्म करना तुम्हारे अधीन नहीं है, कर्म के इसमें जीव परतंत्र है। क्या? परंतु कर्म कैसा करना है इसका अधिकार तुम्हारे पास है। उस कर्म को क्या बनाना है इसका अधिकार तुम्हारे पास है। शास्त्र कर्म कौन सा करना है, कर्म कैसा करना है, कर्म को क्या बनाना है, ये तीन बातों को बताता है। क्या? कर्म कौन सा करना है, कैसा करना है, और कर्म कैसा बनाना है। इसलिए कर्म का उपदेश भगवान ने अर्जुन को कहा वो आप लोगों ने बहुत सुन लिया है। कर्म करने के बिना तुम रह नहीं सकते हो, परंतु कर्म करो, कर्म तो तुम करोगे ही करोगे, परंतु कर्म को जानो। जान करके कर्म करोगे ना तो वो कर्म तुम जिस लक्ष्य पर जाना चाहते हो उस लक्ष्य पर पहुंचाने का साधन बनेगा। और उस कर्म को तुम नहीं जानोगे तो तुम जहां जाना चाहते हो उस लक्ष्य पर पहुंचाने का साधन नहीं बनेगा, बल्कि आपको नीचे गिराने का साधन बनेगा, नीचे पतित करेगा। कर्म तो तुम कर रहे हैं, जो कर्म कर रही है, कर्म हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको कर्म कहते हैं या नहीं कहते ये भी हम कभी सोचते नहीं। हम तो अंधे होकर के कर्म करते, जैसा अंधा आदमी होता है ना, उसको जैसा कोई चलाएगा वैसा ही वो चलता है। क्या? वो दूसरे के आश्रित होकर के चलता है। देखो, कर्म दूसरे के आश्रित होकर के नहीं करना चाहिए, पहली बात है, समझ ना। कर्म करना है तो शास्त्र आश्रित होकर के करे, सद्गुरु आश्रित होकर के करे तो उत्तम कर्म होगा। लोकाश्रित होकर, मनाश्रित होकर, इंद्रियाश्रित होकर या बुद्धियाश्रित होकर के कर्म करोगे तो पतन का मार्ग बन सकता है। ज्ञानेश्वर जी ने स्पष्ट कर दिया है, मनोमार्ग गेला तो तेथे मुकला, हरि पाठी स्थिरावला तो ची मुक्त। जो मन के मार्ग से चलता है ना, जैसा मन कहता है वैसा करता है, जैसा इंद्रिया चाहती है वैसा करता है, जैसा बुद्धि सोचती है वैसा करता है ना। तो हम किस मार्ग से चल रहे हैं? कोई मन मार्ग से चल रहा है, कोई इंद्रियों के मार्ग से चल रहा है, कोई बुद्धि के मार्ग से चल रहा है, और कोई तो कहा कि ये अमुक अमुक ने कहा इसलिए हम कर रहे हैं, दूसरे के नहीं।
यही अंधता है। क्या कर्म करना है तो कर्म के लिए भगवान कहते हैं कि वेद प्रमाण है, वेद श्रुति प्रमाण है, श्रुति ने स्पष्ट कर दिया है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतम् समाः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। शास्त्र कहता है कि कर्म तो तुम करोगे ही, परंतु शास्त्र एक युक्ति बताता है, वो कर्म करो जो कर्म तुम्हें लिपायमान न हो या तुम उस कर्म में लिप्त न हो। क्या कभी कभी कर्म हमें पकड़ता है और कभी कभी हम कर्म को पकड़ते हैं। कर्म हमें पकड़ेगा तब भी नुकसान हमारा, और हम कर्म को पकड़ेंगे तब भी नुकसान हमारा। भगवान यही युक्ति बताते या शास्त्र यही युक्ति बताते, तुम कर्म तो करोगे ही करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते एवश कर्म सर्व प्रकृति निर्गुण ही, क्योंकि वो तुम्हारी जड़ ही कर्म है, तुम्हारा मूल ही कर्म है, तुम्हारा बीज ही कर्म है। क्यों करोगे? क्योंकि तुम कर्म के बीज से ही उत्पन्न हुए हो। अब जो आम के बीज से वो जो उत्पन्न होगा पेड़, वो क्या आमा ही बनेगा कि बबूल बनेगा या बरगद बनेगा? क्या बनेगा? आमा ही बनेगा कि नहीं? कर्म का ही बीज हमारा है, तो कर्म तो हम करेंगे, हमारे स्वभाव में कर्म है। परंतु शास्त्र ये कहता है कि तुम कर्म करो और करना ही चाहिए। ऐसा कोई शास्त्र या महापुरुष नहीं करता है कि कर्म नहीं करना है। कर्म तो करा, क्योंकि वो जानते हैं कि कर्म करने के बिना तो रह ही नहीं सकता है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, बालक हो चाहे बूढ़ा हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कर्म तो वो करेगा ही। परंतु शास्त्र ऐसा रास्ता निकालता है कि कर्म भी करे और कर्म बाधक भी न बने, कर्म साधक बने। क्या बने? कर्म बाधक न बने, कर्म साधक बने, अर्थात तुम्हारे जीवन के लिए कल्याणकारक बने। साधक बने का मतलब क्या? तुम्हारे जीवन के लिए कल्याणकारक बने, सुखकारक बने, आनंददायी बने, तुम्हें आनंद देने वाला हो। और शास्त्र ये भी कहता है हर कर्म तुम्हें सुख दे सकता है, हर कर्म तुम्हें आनंद दे सकता है, हर कर्म तुम्हें मुक्ति का साधन बन सकता है। हाँ, बनाना तुम्हें पड़ेगा। क्या? बनाना तुम्हें पड़ेगा। अब तुम बनाना नहीं चाहते हो, बात दूसरी है। नहीं बनाना चाहते हो तो उसका फल भी भोगो तुम, फिर रोने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो महाभारत में कहा, पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवाः, पापस्य फलमिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति मानवाः। क्या? सुख तो चाहते हो, सुख किसका फल है? पुण्य का फल। पुण्य के बिना सुख नहीं है, परंतु पुण्य करना नहीं चाहते, कचाते हैं। चाहते तो है पर करते नहीं है, चाहते तो है सब। पुण्य के फल को भी चाहते हैं, पुण्य को भी चाहते हैं, परंतु करते हैं क्या? नहीं करते हैं तो दोष किसका है? शास्त्र ने बता दिया, महापुरुषों ने बता दिया, पापस्य फलने छन्ति पापम कुर्वन्ति मानवाः। पाप के फल को कोई नहीं चाहता, दुख को कोई नहीं चाहता है। मदलागी दुख भावे, ऐसे कोई भावे ना जीवे। तुकाराम ने कहा है कि कोई जीव ये नहीं चाहता है कि मैं दुखी हो जाऊं, किसी के अंदर भी ये कामना नहीं होती है, परंतु दुखी होते हैं। क्यों होते हैं उसके कारण को सोचते नहीं है, रोते जरूर है। क्या रोने से दुख दूर हो जाएगा? लोग कहते हैं कि महाराज रोने से थोड़ा दुख हल्का होता है, गलत धारणा है। रोने से दुख हल्का नहीं होता है, विवेक से होता है। ध्यान रखो, शराब से गम नहीं मिटता है, भजन से गम मिटता है। हम लोग उल्टा समझ लिए, ये शराबी लोग। एक को मैंने पूछा क्यों शराब पीते, कहा कि महाराज शराब पीते तो सब मैं भूल जाता हूं, नहीं तो दिमाग इतना ही टेंशन में होता है, सब थकावट जाती है, सभी होती है। हमने कहा जाती है कि आती है? गटर में पड़ता है, रोज मैं देखता हूं, उधर घूमने जाता हूं रोज, वहां दो चार लोग तो पड़े हुए रहते किनारे पर। कहने का तात्पर्य ना समझिए, समझे? इसलिए शास्त्र समझाता है, कर्म वही करो, कुर्वन्ने भी कर्माणि जिजि विशेष छतम समा। श्रुति भी आदेश देती है कि कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जियो, परंतु कौन सा कर्म करते हुए? यज्ञ कर्म करते हुए, यज्ञ कर्म। श्रुति यज्ञ कर्म का आदेश देती है। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। वो कर्म करो कि तुम कर्म में लिपायमान न हो, और कर्म तुम्हारे अंदर आए नहीं। क्या लिपायमान तो तब होता है कि जब देखो दुकान में वस्तु रहती है तो वो वस्तु जल गई, टूट गई, फूट गई, चोरी हो गई, तो तुम्हें दुख होता है क्या? होता है? नहीं होता है। परंतु वही दुकान से वस्तु तुम घर में लाएंगे, क्या वही दुकान की वस्तु घर में लाएंगे, और घर में आते ही क्या हो गए, हाथ से छूट गई और नीचे गिर गई, टूट गई। तो रोए, क्यों रोए? किसने रुलाया? उस वस्तु ने रुलाया? अरे वो वस्तु तुम्हारे अंदर बैठ गई आकर के, तुमने लाई ना तो वो अंदर आ गई, और वो बाहर फूट गई तो तुम्हारे अंदर की भी फूट गई। बाहर के वस्तु ने रुलाया कि अंदर के वस्तु ने रुलाया? बाहर के वस्तु ने नहीं रुलाया, समझ? रुलाया तो तुम्हारे अंदर की वस्तु ने, तुम वस्तु को अंदर ला करके रखा है। शास्त्र ये कहता है कि कर्म करो, परंतु कर्म को अंदर मत आने दो, ये सावधानी रखो। कर्म अंदर आ गया, आ जाएगा तो तुम क्या बन जाओगे? कर्ता बन जाओगे, और ये कर्ता बनना ही भोक्ता का कारण है। और कर्ता ही नहीं बनोगे तो भोक्ता बनोगे क्या? शादी नहीं की तो पति बनेगा? वो बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? किसी का वरण ही नहीं किया उसने, वरण नहीं किया तो उसके अंदर धर्म, दूसरा धर्म आएगा? नहीं। पतित होगा वो? नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि कर्म करना है, परंतु कर्म को अंदर नहीं आने देना है। कहा कि महाराज ये कैसा होगा? प्रश्न होता है ना,
महाराज कर्म करेंगे तो फिर तो अंदर तो आएगा ना, शादी करेंगे तो पत्नी अंदर तो आएगी ना, तुम नहीं चाहोगे तभी वो रहेगी क्या? शादी करोगे और फिर कहोगे कि मैं पति नहीं हूं, मैं पति हो ही नहीं सकता हूं, तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। परंतु शास्त्र कहता है हो सकता है। जो तुम्हें अशक्य लगता है उसको शास्त्र मार्ग बता देता है, जैसा वकील मार्ग बताता है। छूटना बड़ा कठिन लगता है परंतु शास्त्र वकील युक्तियां निकालता है, प्रमाण भी ढूंढ करके निकालता है, युक्तियां भी निकालता है और वो निकालता है बाहर। इसी प्रकार से शास्त्र के पास युक्तियां है, महापुरुषों के पास युक्तियां है और सब प्रमाण युक्तियां है, ऐसी नहीं, अनुभव युक्त युक्तियां है। बिना अनुभव की बात शास्त्र नहीं करता है, जिसका अनुभव नहीं है उसकी बात शास्त्र नहीं करता है, इसलिए शास्त्र की बात स्वीकारना पड़ती है। ये कर्म हो परंतु कर्म हमारे अंदर आए नहीं, इसी के लिए भगवान पहले ये जानना चाहिए कि कर्म है क्या चीज और कर्म के कारण क्या है। भगवान ने 18वें अध्याय के अंदर ये बता दिया है कि नहीं दिए भृताशक्यम तत्तुम कर्मान्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागित्य भिदीयते अनिष्टमिष्टम मिश्रंच आदि। ये भगवान ने कहा है कि जो देह का भरण पोषण करना चाहता वो तो कर्म करने के बिना रह ही नहीं सकता है, कर्म तो करेगा ही करेगा, परंतु कर्म बनाना कैसा बनाना है ये तुम्हारे विवेक पर है। तुम्हारा देखना, तुम्हारा सुनना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा जगना, सोना आदि आदि सब कर्म है। हम कर्म को निकृष्ट बनाते हैं, मध्यम बनाते हैं या उत्तम बनाते हैं, ये तुम्हारे ऊपर है। तो कहेंगे कि महाराज ये भी हमारे क्या प्रारब्ध में जैसा होता है वैसा ही तो होगा, हम क्या कर सकते हैं? नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? ऐसी बात नहीं है, हो सकता है। हाँ, पुरुषार्थ करना पड़ेगा तुम्हें। क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा, ये नहीं मैं बता रहा हूं। कर्म तो तुम कर ही रहे हो परंतु कर्म को कैसा करना है इसके लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए वशिष्ठ जी ने राम को हमेशा कहा कि हे राम, तुम कर्मठ मत बनो, कर्मयोगी मत बनो, पुरुषार्थी बनो। पुरुषार्थी क्या बनो? पुरुषार्थी बनो। कर्म तो पुरुषार्थ का एक पहला पग है, समझे ना? जो जीव पुरुषार्थी बनकर के कर्म करता है वो जीव कर्म करता हुआ भी अलिप्त होता है, असंग होता है, असंग, समझे ना? इसलिए पुरुषार्थ करने के लिए शास्त्र कहता है, कर्म करने के लिए नहीं, पुरुषार्थ कर्म करो परंतु कर्म उसका पुरुषार्थ बन जाए, समझे ना? पराक्रम अलग चीज है, प्रयत्न अलग चीज है, पुरुषार्थ अलग चीज है। क्या हम कर्म को ही पुरुषार्थ मान बैठते हैं? कर्म पुरुषार्थ नहीं है। क्या कर्म को पुरुषार्थ नहीं समझना चाहिए? कहा कि महाराज इसने बड़ा पुरुषार्थ किया, बड़ा पुरुषार्थ किया और बड़ा विद्वान हो गया,
ये ना समझिए, समझ कर्म को पुरुषार्थ कभी नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए? तो पहले कर्म को समझना चाहिए। कर्म है क्या? कर्म को समझना ही पुरुषार्थ है, ध्यान रखो। पुरुषार्थ क्या चीज है, कर्म क्या चीज है, उस कर्म को समझना पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ बनने के लिए शास्त्र कहता है कर्म को तुम समझो। कर्म को समझोगे, कर्म कोई बाधक नहीं है, संसार कोई बाधक नहीं है, संसार ब्रह्म है उसके लिए। फिर समझे, यही बात भगवान इस अध्याय में मैंने बताया था पहले दिन कि अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। इस श्लोक पर बोलना है मेरे को, तो इस श्लोक पर जाने के लिए आज ये भूमिका रूप में बोला है। अभी चार दिन का समय है, तो चार दिन इसी श्लोक पर विचार करना है। पंच कर्म के पांच जो कारण हैं, उन कारणों को समझना है, वो कारण क्या है। और कारण को समझोगे, देखो मैं हमेशा कहता हूं पुरुषार्थ ज्ञान प्रधान होता है और कर्म क्रिया प्रधान होता है, समझे। इसलिए कर्म को पुरुषार्थ समझने की भूल नहीं करना चाहिए। पुरुषार्थ कभी कर्म नहीं हो सकता और कर्म कभी पुरुषार्थ नहीं हो सकता। पुरुषार्थ दूसरी चीज है, इसलिए पुरुषार्थ करना है, इसलिए इन चीजों को समझाना है। अभी क्रम क्रम से समझाएंगे, आज का समय तो ये हो गया। फिर इसके बाद अभी फिर पंचदशी का भी स्वाध्याय कराना है मेरे को, इसलिए आज यही पूर्ण विराम करते हैं, पर अभी क्रम से विचार चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण ओम शांति शांति।